आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति कुमारी एंड आई एम डूइंग माय बीए फ्रॉम वनस्थली जयपुर। और आज मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश कंपल्सरी 1 फेस्टून का पहला चैप्टर विजन 2020 पढ़ाने जा रही हूँ। तो लेसन शुरू करने से पहले हम अबाउट द लेसन देखेंगे। विजन फॉर 2020 वॉज इनिशियली अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल of India's Department of Science and Technology under the chairmanship of Dr. APJ Kalam and a team of 500 experts. अब vision for 2020 जो है वो शुरुआत पे एक दस्तावेज था जो कि Technology Information Forecasting and Assessment Council द्वारा बनाया गया था। Council यानी संगठन जिसके की जो head थे, जो chairman थे, वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने तो सुना ही होगा, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उनके साथ साथ 500 और लोग इस टीम में जुड़े हुए थे, इस काउंसिल में, संगठन में जुड़े हुए थे। द प्लान इज फर्दर डिटेल्ड इन द बुक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम विच डॉक्टर कलाम को ऑथर्ड विद डॉक्टर वाई एस रंजन। द एसे फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंटू अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2020। Five areas have been identified based on India's core competence, natural resources, and talented manpower for integrated action to speed up the growth rate of GDP and realize the vision of developed India. अब ये जो आपका पार्ट है, जो चैप्टर है विजन 2020, ये दरअसल एक और बड़ी किताब इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम का एक छोटा सा अंग है, और उस किताब को डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर वाई एस रंजन के साथ मिलकर लिखा था। और इस पैसेज में, आपके इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे 2020 तक भारत को एक विकसित देश बनाया जा सकता है, और कैसे हमारे देश की जो जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो सालाना आय है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं इसके जो राइटर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो लेखक हैं इसके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1931 to 2015, मतलब उनका जन्म 1931 में हुआ था और 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। Was the 11th president of India from 2002 to 2007. हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, जो कि 2002 में राष्ट्रपति बने थे और 2007 तक वो बने रहे। He succeeded in developing and launching Prithvi and Agni missiles. He thus came to be known as the missile man of India. उन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स को लॉन्च करने और बनाने में काफी योगदान दिया था, और इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। अब शुरू करते हैं चैप्टर विजन 2020। विजन मतलब होता है दृष्टि। When the India Today Conclave posed the question India Tomorrow, Global Giant or Pygmy, I recalled an event that occurred while meeting students in Nagaland during my recent visit there. अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब इंडिया टुडे एक उनका विज्ञापन भी आता है, न्यूज़पेपर भी आता है, का एक न्यूज़पेपर की कंपनी है, तो जब इंडिया टुडे ने ऐसा सवाल किया कि आने वाला भारत जो है वो पूरे दुनिया में काफी बड़ा नाम करेगा या फिर पिग्मी यानी बौना ही रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, तो कलाम जी को एक और उत्सव याद आ गया जो कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही देखा था जब वो नागालैंड गए थे, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र वगैरह हैं, उनसे मिलने के लिए। अ क्लास 5 स्टूडेंट आस्क्ड मी I would like to live in a happy, prosperous, peaceful and safe India. Tell me, what will you do, Mr. President? Also, tell what I should do for that. During my interactions with school children of 17 states and 3 union territories, which I have visited, a series of similar questions were raised. अब इसमें वो कहते हैं कि जब वो नागालैंड गए थे तो वहाँ पे एक 5वीं कक्षा के एक छात्र ने उनसे पूछा कि बताइए राष्ट्रपति जी, आप हमारे देश को एक विकसित देश बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे देश को एक शांति प्रिय और एक सेफ प्लेस बनाने के लिए, एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए क्या करेंगे। और उसके साथ साथ उसने ये भी पूछा कि और मैं क्या करूं ताकि हमारा देश विकसित हो सके। और फिर कलाम जी कहते हैं कि उन्होंने और भी काफी विद्यालय में वो गए थे, 17 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज और भी वो गए थे, और वहां पे उन्हें इस तरह के काफी सारे सवालों का सामना करना पड़ा। Sometimes I feel a nation of a billion people think like a nation of a million people. अब कलाम जी कहते हैं कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि एक अरबों लोगों का देश सिर्फ केवल एक लाखों लोगों के देश जैसा सोचता है। Why is it so? ऐसा क्यों? I consider no other nation has got civilizational heritage like India to live a near peaceful life. अब वो कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि किसी और देश को इंडिया की तरह, भारत की तरह एक सभ्य विरासत मिली है। इंडियन माइंड्स वर केपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग द बेस्ट ऑफ कल्चर्स फ्रॉम सक्सेसिव इन्वेजन। नाउ वी शुड नॉट अलाउ एनी रिलीजन और एनी इंडिविजुअल फेटिसिज्म टू इंडेंजर आवर नेशन बिकॉज द नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट कम्पेयर टू एनी इंडिविजुअल और पार्टी और रिलीजन। अब वो कहते हैं कि हमारे जो भारत देश के जो वासी हैं, जो हिंदुस्तानी दिमाग है, वो जो है वो काफी सारे अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लोगों के तौर तरीकों से मिलके बना हुआ है। यहाँ हमारे देश में काफी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, काफी सारे कल्चर को फॉलो किया जाता है, कल्चर को माना जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं जैसे हमारा देश ऐसे ही यूनिटी बना के चलना चाहिए, एकाग्रता दिखानी चाहिए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन या और ऐसा कुछ भी हमारे देश को नहीं तोड़ सकता। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। इवन द रिच एंड डेवलप्ड नेशंस इन स्पाइट ऑफ देयर वेल्थ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ आर अफ्रेड ऑफ देयर वर्चुअल एनिमीज एंड दे लिव विद द फियर कॉम्प्लेक्स। और वो कहते हैं कि वो जो दूसरे देश हैं जो कि विकसित हैं, अच्छी तरह से उनमें विकास हो रखा है, आधुनिक है, वो तो लगभग अपने दुश्मनों से डरते हैं और इसी डर में रहते हैं और इसी जलन में रहते हैं। Economic prosperity and military strength alone do not bring peace to any nation, as we see from the dynamics of the world. वो कहते हैं कि जैसा कि हम दूसरों देशों से देखते ही हैं कि खाली विकास और धन और पैसा यही सब जो है वो शांति और सुरक्षा ये सब नहीं लाता। In such a situation, it is also very important to transform our religious forces into spiritual forces. वो कहते हैं कि ऐसे हालातों में हमें अपने मन, दिमाग इन सब से ज्यादा काम लेने की जरूरत होती है, ना कि दूसरे अलग फोर्सेस से। और वो कहते हैं आगे कि इवोल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस इन एडिशन टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ विल ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। यानी विकास के साथ साथ हमारे मन की जो शांति है वो ही हमें खुशी, शांति और काफी सारी प्रोस्पेरिटी लाने में मदद करेगी, यानी खुशहाली लाने में मदद करेगी। अब अगले पैरा पे बढ़ते हैं। वी गॉट फ्रीडम इन 1947 एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट आई कॉल द फर्स्ट विजन फॉर द नेशन। हमें आजादी 1947 में मिली थी, 1947 में मिली थी, जिसको कि कलाम जी हमारे देश का पहली दृष्टि कहते हैं, पहला विजन कहते हैं या मानते हैं। This vision created the best of leaders in many fields like politics, philosophy, judiciary, science and technology and industry. आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि ये जो हमारी आजादी की जो लड़ाई थी उसने हमारे देश में कई नेता पैदा किए हर तरह की फील्ड पे, भले ही वो पॉलिटिक का एरिया हो या फिर फिलोसफी की बात हो या विज्ञान की बात हो या इंडस्ट्री की बात हो, हर जगह कई अच्छे अच्छे नेता और होनहार नेता हमारे देश को मिले पहले विजन में, यानी आजादी के समय। Improvements took place in many aspects of life, in literacy, agriculture products, strategic areas, certain small and large-scale industries. Now more than 50 years have gone by and we are called as one among the hundreds of developing countries and in a distinct way a separation from G8 countries. अब वो कहते हैं कि इस आजादी की लड़ाई में और इस आजादी के समय हमारे देश ने काफी सारे चीजों में विकसिति दिखाई। पहले से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हुए, जो हमारा खेती बाड़ी के संबंधित जो चीजें थी वो ज्यादा अच्छी हुई, जो इंडस्ट्रीज के जो रिलेटेड जो संबंधित चीजें थी वो भी बढ़ी। और वो कहते हैं कि अब 50 साल से ज्यादा ही बीत चुके हैं आजादी के और अब हमारा जो देश है वो काफी और अनेकों देशों के साथ विकसित होने वाले देशों के अंदर कहलाता है। वी हैव मेनी चैलेंजेस, नियरली 260 मिलियन पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन हैव टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ अ गुड लाइफ, 100% लिटरेसी, health for all, multiple industrial and agriculture productivity and a lifestyle with a value system have to emerge. Hence, we need the second vision for the nation to become developed. अब वो कहते हैं कि हमारा देश विकसित होने वाले देशों में आया है, लेकिन अभी भी हमें आगे और काफी सारे पड़ाव को झेलना है। अभी भी हमारे देश में काफी ज्यादा दरिद्रता है, काफी लोग हैं जो दरिद्रता की जो लाइन है उसके नीचे आते हैं और हमें उस सब चीजों में सुधार लाने की जरूरत है, चाहे वो खेती बाड़ी की चीजें हो या फिर एक इंसान की आम जिंदगी, हर चीजों में विकास लाने की जरूरत है और यही जो है हमारे देश की दूसरी दृष्टि होगी। After independence, India looked forward to development through 5-year plans. The green revolution and technological growth enabled India to prosper with self-sufficiency in food and achievements in many technology frontiers, particularly in the past 2 decades. आजादी के बाद हमारे देश ने 5-year plans को अपनाया विकास लाने के लिए। जो पांच मेन जो प्लान्स थे उन सबको 5 साल के लिए ऐसे ऐसे टुकड़ों में उन्होंने अपनाते गए और आज की तारीख में हमारे देश में 12 5-year प्लान्स आ चुके हैं। और जो 5-year प्लान जो पहला था उसी में आया था द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में यूं था कि हम जो पेस्टिसाइड्स वगैरह खाद वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करें खेती बाड़ी के लिए। अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन केम ड्यूरिंग द इन्फॉर्मेशन एज व्हेन इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स पोजीशन विद इट्स स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टूडे इंडिया इज इन द नॉलेज एज विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन विद अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। और हमारे देश ने सबसे बड़ी सफलता तब पाई जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है, उसमें जब विकास आया, वो जब डेवलप हुआ। और उसी की वजह से आज कई देशों में इंडिया, जो हमारे देश है भारत, उसका एक अच्छी इकोनॉमी में, एक मजबूत इकोनॉमी में नाम आता है। इन द 21st सेंचुरी अ न्यू सोसाइटी इज इमर्जिंग where knowledge is a primary production resource instead of capital and labor. People's lives will be enriched by IT-driven knowledge, products and systems, biotechnology and space technology. As a further revelation, it is predicted that humanity will see habitat in one of the planets and space solar power radiating to the earth for electric power. अब वो कहते हैं कि जो 21वीं शताब्दी होगी या जो आने वाला समय होगा उसमें हमारा देश और भी ज्यादा विकसित करेगा, चाहे वो जो कैपिटल होगा या चाहे वो लेबर होगा, यानी चाहे जो मजदूर हैं वो होंगे या फिर जो पूंजी होगी और जो श्रम होगा यानी लेबर होगा। और इसके आगे वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों में हमारे देश से या पूरे ही दुनिया से जो लोग हैं वो जाके दूसरे ग्रह में बसे और दूसरे ग्रह में अपना निवास करें, इतना ज्यादा विकास होने की संभावनाएं हैं। नैनो टेक्नोलॉजी विल एंटर इंटू ह्यूमन यूजेस लाइक द कंट्रोल सिस्टम ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेडिकल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड एरोस्पेस सिस्टम। फिर आगे भी कल्याण जी यही लिखते हैं कि जो औद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इतनी बढ़ेगी कि लोगों की जिंदगी में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो यानी आना जाना हो, या फिर जो मेडिकल हो, जो दवाइयां हो, या फिर एरोस्पेस यानी जो स्पेस में जो चीजें होती हैं, उन सब चीजों में काफी विकास दिखेगा। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस द इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट 7-8% टू द जीडीपी। इट इज expected that by 2010 in these countries ICT will account for 25% of the GDP either directly or indirectly। तो ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दूसरे जो देश है वहाँ के जो आईटी सेक्टर है, जो आईसीटी सेक्टर है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो अपने देशों की जीडीपी में 7-8% तक का कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं जीडीपी बढ़ाने के लिए। और ऐसा माना गया था कि 2010 तक वो जो देशों की जो आईसीटी सेक्टर्स हैं वो 25% तक का योगदान देंगे अपनी जीडीपी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और वहीं इन इंडिया आईसीटी टुडे अकाउंट्स फॉर नियरली 2% ऑफ जीडीपी। टू बी अ डेवलप्ड नेशन वी शुड एनहांस दिस सिग्निफिकेंटली। और वही हमारे देश में जो आईसीटी सेक्टर है वो केवल 2% योगदान देता है जीडीपी में, और इसका बढ़ना बहुत जरूरी है हमारे देश के विकास के लिए। Our core competencies that can be exploited in addition to what has been planned in 1998 include information security, scientific software development and e-governance that can spearhead a strong domestic market, entertainment, education, hardware and chip design and wireless. If we exploit these areas of our core competency, we can create Indian MNCs and aim a target of $150 billion by 2010. Yani ki hamari jo desh ki jo आईटी सेक्टर है या फिर जो विज्ञान है या फिर ई गवर्नेंस यानी जो सरकारी कामकाज जो हम ऑनलाइन करते हैं वो, या फिर इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन से जुड़ी चीजें, या फिर जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो आम बाजार है, या जो एडुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई संबंधित चीजें हैं, उन सब में विकास लाना जरूरी है। और हमारे देश की जो MNCs है उनका जो एम है, जो लक्ष्य है, वो होना चाहिए $150 बिलियन कमाने का 2010 तक, यानी $150 अरब $2010 तक। आगे बढ़ते हैं। अनदर को कॉम्पिटेंस वी शुड डेवलप इज इन बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया इज रिच इन हर्ब्स, जर्मप्लाज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज आर इम्पोर्टिंग दीज बायो रिसोर्सेज इन रॉ फॉर्म, एडिंग वैल्यू टू देम एंड एक्सपोर्टिंग देम एज स्पेशल सीड्स एंड बायो मटेरियल्स टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अगली जो चीज हमारे देश को ध्यान देने की जरूरत है वो है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी यानी जो पेड़ पौधे से संबंधित जो चीजें हैं उनको उगाने में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो अब हमें आपको तो पता ही होगा कि भारत देश इस मामले में बहुत अमीर है। हमारे यहाँ ज्यादातर खेती बाड़ी से ही लोग जुड़े हुए हैं और एक जमाने में हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। पर आज के जमाने में हो कुछ ऐसा रहा है कि जो दूसरे देश है वो ऐसे सीड्स ऐसे बीज बनाते हैं जिससे कि पेड़ पौधे जल्दी उग सके और फिर वो दूसरे देशों में बेचते हैं, और हमारा भारत देश भी एक ऐसा देश है जो उन देशों से ये सब चीजें खरीदता है। They also own fully protected patents of these products. Instead of allowing export of such resources and imported value-added products at high cost, India must add its own technology for conversion of such resources to value-added products for use in domestic requirement as well as for export of the global herbal product market of $61 billion. अब ये जो दूसरे देश से जो ऐसे बीज बनाते हैं ये इन बीज पे अपना पूरा पेटेंट भी जमाते हैं। पेटेंट यानी ऐसी राइट कि कोई और इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता क्योंकि ये उन्होंने बनाया है। और कलाम जी ने लिखा है कि अब भारत देश को ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे जो बीज है वो सब नहीं खरीदना चाहिए। चाइना हैज अ शेयर ऑफ अराउंड $3 billion whereas India has share not even around $100 million. Hence, there is a tremendous opportunity for a higher market share. India has similar potential for promoting floriculture and aquaculture in a big way. मतलब चाइना का जो शेयर है, चाइना का जो हिस्सा है, मतलब चाइना जो दूसरे देशों में सामान बेचता है वो लगभग $3 अरब का होता है, और वहीं जो इंडिया जो सामान बेचता है, जो एक्सपोर्ट करता है, वो $10 करोड़ तक का भी नहीं होता। इसलिए और जबकि हमारे देश में भी ऐसी काफी सारे खेती बाड़ी से जुड़ी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इतने पीछे हैं। तो इन सब में विकास लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी तो हमारा देश ओवरऑल पूरी तरीके से विकास कर पाएगा। आगे बढ़ते हुए, Our Prime Minister, in his Independence Day address from the Red Fort on August 15, 2002, declared that India would become a developed nation by 2020. India has entered the 10th five-year plan with a focus on all-around development. The 10th plan is very vital period as it has to lay the foundation for this journey on transformation by initiating mission projects that will bring economic strength to the nation. In order to realize a developed India by 2020, five key areas have been identified for an integrated action. अब आगे कलाम जी कहते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले से स्पीच में कहा था कि डिक्लेयर किया था बताया था कि अब हमारे देश का 10वां फाइव ईयर प्लान लॉन्च होगा, जिसमें कि जो नीचे आपके पेज 3 पे जो 5 पॉइंट्स हैं वो सब उसमें आएंगे और इन सबको हमारा देश फॉलो करेगा ताकि हमारे देश का विकास हो सके। और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले साल यानी इस साल 2020 तक हमारा देश जो है वो एक विकसित देश कहलाएगा, ना कि वो देश जो कि विकास हो रहा है। तो कौन से 5 एरियाज थे जो आए थे हमारे 10th फाइव ईयर प्लान में, 10वें फाइव ईयर प्लान में, वो अब हम देखेंगे। पहला है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग विद अ टारगेट ऑफ 360 million tons ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन अ ईयर। अदर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो फूड प्रोसेसिंग विल ब्रिंग फूड सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी टू द रूरल पीपल एंड स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला जो था वो खेती बाड़ी से संबंधित चीजें थी, जिसमें उस प्लान में था कि कम से कम 36 करोड़ टन खाने का उपजात किया जाएगा, ताकि इससे दो चीजें हो सके, एक तो हम एक्सपोर्ट करें यानी दूसरे देशों में बेचें, और दूसरा कि फूड सिक्योरिटी बनी रहे, यानी आने वाले समय होगा उसमें अगर कोई अकाल आता है या कोई और नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई नेचुरल जैसे भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ भी होता है, बादल फटता है, कुछ भी होता है, तो उस समय में हमारे पास खाना रहे अपने जीवन को ऐसे चलाने के लिए, और ना ही ज्यादा दिक्कतों का ज्यादा सामना ना करना पड़े। दूसरा है एडुकेशन एंड हेल्थ केयर एम्ड एट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लीडिंग टू सोसाइटी टू सोशल सिक्योरिटी एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। यानी इस प्लान के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोगों में रोजगार बढ़े और लोगों में जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल यानी आबादी को नियंत्रित रखने की जो है समझ जाए और उन्हें पता चले कि इसकी अहमियत आखिर क्या है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिलायबल एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच इज वाइटल फॉर ऑल कोर सेक्टर। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास होना, उसका डेवलपमेंट होना, और उसके साथ साथ देश के हर एक कोने में बिजली का सप्लाई करना, बिजली का पहुंचना भी बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज वन ऑफ आवर कोर कॉम्पिटेंसीज प्रमोटिंग एडुकेशन इन रिमोट एरियाज एंड क्रिएटिंग मैसिव एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल वेल्थ थ्रू एक्सपोर्ट अर्निंग। अब उसके बाद है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी सेक्टर है उसमें भी बढ़ाव लाना, क्योंकि वो उसमें अगर बढ़ाव आएगा तभी लोगों के बीच में जो रिमोट एरियाज है, जो बैकग्राउंड एरियाज है, जो पिछड़े हुए जो एरियाज हैं उनमें शिक्षा पहुंचेगी और उन लोगों में जागरूकता आएगी और तभी तो सब एक समूह में काम करके हमारे देश का विकास लाने में मदद करेंगे। फिर आखिरी है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, द प्रोग्रेस इन न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज विल प्रोवाइड सस्टेन्ड ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस फॉर द नेशन। यानी जो परमाणु या स्पेस या फिर जो डिफेंस यानी सुरक्षा दल टेक्नोलॉजीज जो है उनसे जुड़ी चीजें हैं जो उनमें भी ज्यादा विकास आने की जरूरत है, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा। These five areas are closely interrelated and will lead to national food and economic security. ये जो पांच पॉइंट जो भी आपने देखे जो पढ़े वो सब आपस में काफी जुड़े हुए हैं और इन सब का होना बहुत जरूरी है हमारे देश के विकास के लिए। A strong partnership among the R&D, academia, industry, business and the community as a whole with government departments and agencies will be essential to accomplish the vision. Apart from the plan to network the major rivers, a scheme called providing urban amenities in rural areas can help create wealth and prosperity. अब है कि जो इन सब के साथ साथ जो R&D यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो लैब है या जो बिजनेस वाले लोग हैं या जो सरकार है, जो सरकारी कामकाज होते हैं उनसे जुड़े जो दस्तावेज है वो सब भी हमारे विजन 2020 यानी दृष्टि को पाने में काफी मदद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्लान टू नेटवर्क मेजर एरियाज, और इसके साथ साथ एक और प्लान बना है जिसका नाम है प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज है, जो गांव वगैरह जो पिछड़े एरियाज है उनके साथ साथ थोड़े जो अर्बन एरियाज है जो शहर वहर है उन सब में भी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी लाने में, विकास लाने में मदद करने के लिए प्लान बनाया गया है। The model envisages a habitat designed to improve the quality of life in rural places and make special suggestions to remove urban congestions too. ये जो पूरा जो उद्योग का नाम है पूरा PURA, वो जो गांव वगैरह वाले जो एरियाज है वहां की दिक्कतें हटा के और जो शहर की जो एरियाज है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है उसको भी ठीक करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। As against a conventional city, say rectangular in shape and measuring approximately 10 km by 6 km, the model considers a ring-shaped town integrating a minimum of 8 to 10 villages in the same area. This model provides easy access to villages, saves transportation time, cut costs substantially, and is more convenient for general public. Such a model of establishing a circular connectivity of rural villages complexes will accelerate rural development. प्रोसेस बाय एम्पावरमेंट। अब इसमें यही लिखा है कि ये जो प्रोग्राम आया है ये जो है गांव वगैरह में ज्यादा विकास लाने के लिए मदद करेगा, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन टाइम यानी आने जाने का समय बचाने में मदद करेगा और उनके जो खर्चे हैं उनको कम करने में मदद करेगा और जो जनरल पब्लिक है जो आम आदमी आम जनता जो है उनको भी काफी मदद करेगा। The nation's strength predominantly resides in its natural and human resources, which we would leverage. Human resources particularly with a large young population is the unique core strength of the nation. There are 700 million people below 35 years of age in the population of a billion people. अब इसमें लिखा है कि देश की सबसे बड़ी ताकत जो है वो आज का युवा बन सकता है, जो श्रम है वो बन सकता है। और ऐसा लिखा है कि हमारे देश में 700 मिलियन पीपल जो है, सो 70 करोड़ की जो लोग हैं उसमें से जो 35 साल के नीचे के लोग ज्यादा हैं, मतलब 35 साल के नीचे लोग 70 करोड़ लोग हैं हमारे अरबों की आबादी में। The nation needs young leaders who can command the change for transformation of India into a developed nation inundated with knowledge society from now to 20 years. अब ये जो युवा पीढ़ी जो है, जैसा कि यहाँ देखा कि 70 करोड़ लोग 35 साल से नीचे हैं हमारे इस अरबों की आबादी में, तो ये जो लोग हैं ये हमारे देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं, सबसे ज्यादा योगदायी हो सकते हैं। क्वालिटी लीडर्स आर लाइक मैग्नेट्स दैट विल अट्रैक्ट द बेस्ट पर्सन टू बिल्ड अ टीम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव इंस्पायरिंग लीडरशिप इवन ड्यूरिंग फेलियर्स ऑफ मिशन एज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क। द क्रिएटर्स ऑफ विजन इग्नाइट द यंग माइंड इन पर्टिकुलर। अब इसमें लिखा है जो क्वालिटी लीडर्स है, जो अच्छे नेता है, वही हमारे युवा जो आज की युवा है, जो आज की जो यंग जनरेशन है वही आगे चल के अच्छे नेता बनेंगी और ये जो नेता जो होंगे वही हमारे देश की विकसिति में ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, बहुत अहम भूमिका निभा पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे कि कैसे क्या करना है ताकि हमारा देश जो है एक विकसित देश बन सके। What are the qualities of such a creative leader? अब इतना अच्छा जो नेता बनेगा, जो इतना अच्छा नेतृत्व करेगा, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उसकी खासियत क्या होनी चाहिए? He or she exercises changes in the traditional role from commander to coach, from manager to mentor, from director to delegator, and from one who demands respect to one who facilitates self-respect. The higher the proportion of creative leaders in a nation, the higher the proportion of success of vision like developed India. अब ये जो लीडर्स होंगे इन्हें सिर्फ कमांड देना, इन्हें ऑर्डर देना, निर्देश देना के अलावा काम कैसे करना है वो भी बताना आना चाहिए, लोगों की इज्जत देना आना चाहिए और लोगों की कठिनाइयों और मदद कठिनाइयों में उनकी मदद करना आना चाहिए, वही एक अच्छा नेता कहलाता है। और हमारे देश को ऐसी बहुत सारे नेताओं की जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा नेता आएंगे ऐसे, जितने ज्यादा ऐसे लोग आएंगे उतना ही ज्यादा हमारा देश सफलता प्राप्त कर पाएगा विकसित होने में। With the vision and characteristics of creative leader defined, what can be the task of various people? The student community can remove the illiteracy of a certain number of people in the area where their schools or houses are situated. Only a burning candle can light another. Teachers and parents can assist them in this task. यानी जो अब इसके साथ साथ जो छात्र लोग हैं, जो आप सब लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, वो सब भी काफी मदद कर सकते हैं अशिक्षा हटाने में। जो छोटी छोटी जगह हैं, जो लोग हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, जो अशिक्षित है, उनको शिक्षा देके आप लोग हमारे देश के विकास में, जो युवा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो देश के विकास में मदद कर सकते हैं। क्योंकि एक जलता हुआ दिया ही तो दूसरे को जला सकता है, यानी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो उसे बांटने से ही बढ़ती है, और जिसके पास ज्ञान है वो दूसरे को ज्ञान ही अपना ज्ञान दे के ही बढ़ा सकता है। तो जो युवा है, जो लोग है जिनको की ज्ञान है, जिनको की समझ है, वो अपना समझ अपना ज्ञान बांट के हमारे देश की विकसिति में मदद कर सकते हैं। और इसमें जो उनके टीचर्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके माँ बाप हैं, वो सब मदद कर सकते हैं उनकी इस कार्य में। द गवर्नमेंट एंड R&D लैब्स कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सो द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज एंड दे बिकम कम्पिटेटिव। द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी सो दैट द मार्केट शेयर कैन बी इंक्रीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड GDP। अब इसके साथ साथ जो सरकार है और जो R&D लैब्स है वो भी मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ा के, और जो है मार्केट यानी जो बाजार है वहाँ पे मुकाबला बढ़ा के हमारे देश की जो GDP है, जो सालानिक आय है, उसको बढ़ाने में मदद कर सकती है। और इसी अगर GDP बढ़ेगी तो ही तो हमारे देश का विकास भी होगा। दे कैन एम टू बिकम मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबल लीडर्स। द फार्मिंग कम्युनिटी हैज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ न्यू एंड अवेलेबल साइंटिफिक मेथड्स पर्टिकुलरली फॉर ड्राई लैंड कल्टिवेशन। इसके साथ साथ ये जो है अपना लक्ष्य रख सकते हैं, अपना एम रख सकते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो MNCs है, वो पूरे देश में अच्छा एक अहम भूमिका, एक नाम करने के लिए और ग्लोबल लीडर्स बनने के लिए, पूरे देश में एक नेता जैसा फिगर बनने के लिए, नाम करने के लिए काफी योगदान कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं बनने की। और इसके साथ साथ जो किसान है, जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, वो लोग भी अपने जो जो भी धान वगैरह जो उपजाते हैं उसको बढ़ा के भी हमारे देश के विकास के लिए मदद कर सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज वर्कर्स हैव अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट इन द एरियाज ऑफ टेलीमेडिसिन, टेलीकेशन एंड ई गवर्नेंस फॉर रूरल एरियाज अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस रोल। पूरा हैज टू बी अ बिजनेस प्रोपोजिशन economically viable and managed by entrepreneurs and small-scale industrialists with government participation as it involves education. टेली मतलब होता है जो कार्य दूर से ही करा जा सके, जैसे जो अभी जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, बिना आमने सामने मिले हुए, ये एक तरह का टेली एडुकेशन है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि जो IT सेक्टर है, जो हमारा देश का जो इतना टेक्नोलॉजी वगैरह है, वो सब इतना बढ़ सकता है कि टेली मेडिसिन, टेली एडुकेशन यानी जो दवाइयां हैं, जो पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं और उनसे संबंधित जो चीजें हैं, वो ऐसे ही टेली के फॉर्म में दूर से ही लोगों को प्रदान किया जा सके, ताकि जगह जगह जाने की भी मुसीबत और दिक्कतें ना झेलनी पड़े, और ऐसे ही ऑनलाइन चीजें हो सके, ई गवर्नेंस यानी ऑनलाइन ही सरकारी कागजात और कार्यों को करा जा सके, दस्तावेजों को करा जा सके। पूरा हैज टू बी अ बिजनेस प्रोपोजिशन इकोनॉमिकली वायबल एंड मैनेज्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट विद गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। और वो जो पूरा जो एक नीति बनी है वो भी काफी मदद कर सकती है इसमें, मैनेज करके जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो कंपनी वगैरह है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, जो पूरा जो स्कीम जो फॉर्म हुई है, वो सब भी मदद कर सकती है हमारी इस तरह से देश के विकास के लिए, जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इन सबको बढ़ावा देके इन सबको मैनेज कर। In this vision period, the government has to build a name for itself by quick decision-making and transparent administration. The media has to become a partner and a positive critic in national development. Our musicians, poets, artisans and artists should nurture the glory of a great civilization and sing the song of developed India. This type of motivated environment will indeed lay a great foundation for our vision of transforming India into a developed nation. अब आखिरी में लिखा गया है कि हमारी जो मीडिया है वो भी हमारे देश की अच्छी अच्छी बातें फैला के अपने मीडिया में दर्शा के मदद कर सकती है विकसिति के लिए और लोगों में ये बात पहुंचा सकती है कि आखिर क्यों एक विकास देश जरूरी है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो लेखक हैं, जो गायक हैं या जो चित्रकार वगैरह हैं, वो सब अपनी कला में, अपने चित्र में, अपने जो उनके जो कवि वगैरह हैं, अपनी कविताओं में दर्शा के कि हमारे देश की अच्छी अच्छी बातें दर्शा के हमारे देश का जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो उस विकास के लिए जो हमारे देश कर रहा है, वो सब बता के हमारे देश की विकसिति और देश के नाम के लिए काफी मदद कर सकती हैं। और अगर ये सब चीजें होंगी तभी तो हमारा देश आखिरकार जाके एक विकसित देश कहलाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही देखते हैं विजन 2020 जो कि लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा और ये एक पार्ट उनकी दूसरी बुक जो कि उन्होंने डॉक्टर वाईएस रंजन के साथ मिलकर लिखा था उससे लिया गया है। और इसमें हम यही देखते हैं कि आखिर हमारा देश जो है उसकी दूसरी दृष्टि क्या है और उसका विकास कैसे हो सकता है और क्या क्या अहम भूमिका है जो हम लोग, जो आम जनता है, वो तक हमारे देश के विकास के लिए निभा सकती है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो हम अगली ऑडियो में करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।